सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। आज 4 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 13 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोनी रावत, आपका गांव है अजयपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। पीयूष गोयल, आप हैं लुधियाना, पंजाब से। अनिल चौबे, आपका गांव है केदारपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। शशिकांत कुमार, आप भोपाल, मध्य प्रदेश से हैं। नितेश कुमार विश्वकर्मा, आपका गांव है प्योर पांडे, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। विनीत कुमार पांडे, आप अमेठी, उत्तर प्रदेश से हैं। गोविंद कुमार राउत, नई दिल्ली से। भारत भूषण, आपका गांव है नागपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। हिमानी, आप रुड़की, उत्तराखंड से हैं। ज्योति सिंह, पानीपत, हरियाणा से। आशा, नई दिल्ली से। अर्जुन सिंह, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से। और अखिलेश कुमार, आपका गांव है केसरिया, जिला मोतिहारी, बिहार से। तो सोनी, पीयूष, अनिल, शशिकांत, नितेश, विनीत, गोविंद, भारत भूषण, हिमानी, ज्योति, आशा, अर्जुन और अखिलेश, आप सभी 13 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज मुझे आपको कुछ सूचनाएं देनी है और सबसे पहली और मैं समझता हूं कि एक बड़ी सूचना यह है कि जैसा मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं वो अब थोड़ी सी बची हैं और उसकी डेट फिर फिक्स कर दी गई है। आखिरी डेट 5 तारीख, यानी कि 5 जनवरी। 5 जनवरी के बाद डिस्काउंटेड सीट्स के तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन होंगे लेकिन डिस्काउंट का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। मित्रों, आज 4 तारीख हो चुकी है, यानी कि कल उसका आखिरी दिन है। कल डेली ऑडियो चूंकि नहीं मैं लेकर के आपके सामने आ सकूंगा, इसीलिए उसकी सूचना मैं आज ही आपको दे रहा हूं। और इनफैक्ट सच पूछिए तो आपको अलर्ट कर रहा हूं कि यदि आप डिस्काउंटेड सीट्स का लाभ लेना चाहते हैं तो कल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मुझे यह बात बार बार इसलिए आप सबसे कहनी पड़ रही है मित्रों कि जब डिस्काउंटेड सीट्स पे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाते हैं और फुल फीस की सीट्स पे रजिस्ट्रेशन होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, हमको डिस्काउंटेड सीट्स का लाभ दे दिया जाए। हम लोगों के लिए धर्म संकट यह होता है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसे हम दे दें और जो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है उसे हम न दें। इससे तो बेहतर है कि हम उसे ओपन ही कर दें सबके लिए कि डिस्काउंटेड सीट्स अवेलेबल हैं। मित्रों, ये भेदभाव करना हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर पाती है। और सच पूछिए तो जो रिक्वेस्ट करते हैं उनको मना करने में भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन हम मजबूर होते हैं और उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए फिर से मैं आज आप सबको याद दिला रहा हूं कि यदि आपके दिमाग में क्लासेस में आने की बात है तो आप जितनी जल्दी हो सके निर्णय ले लें, बशर्ते कि आप डिस्काउंटेड सीट्स का लाभ लेना चाह रहे हो। तो अदरवाइज तो फिर रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। तो अंतिम बार फिर से एक बार यह कि कल तक ही डिस्काउंटेड सीट्स यानी कि 2000 रुपए का आपको डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, इस सूचना के बाद अब मैं कुछ अपनी हर फ्राइडे को दी जाने वाली सूचना पर आता हूं। और वो सूचनाएं हैं, कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, आप जानते ही हैं। हाँ, कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। ठीक इसी तरह से योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल्स, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 वीकली क्वेश्चन दिया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न जो मेंस के पैटर्न पर होता है। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। ये कुछ सूचनाएं थी। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे चेक कूटनीति के तहत बात करूंगा, चेक डिप्लोमेसी। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। अभी शुरुआत हुई है, देखते हैं कि इससे क्या निकल करके आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जलंधर के निकट जो 106 आप कह लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, उसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं कि क्या उसमें से निकल करके आता है। ये सूचना मात्र है। मित्रों, वंदे मातरम को लेकर के आपने न्यूज सुनी कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकार का जो सचिवालय है वहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी वंदे मातरम का गान किया करते थे, लेकिन अब जो चुनाव हुए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, तो आने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने वंदे मातरम, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने उस पर उसकी मनाही की, उसको लेकर के विवाद खड़े हुए। वस्तु स्थिति पर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि जो अभी सरकार है वो वंदे मातरम के साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबको जोड़ करके कुछ इस तरह की बातें अभी चल रही हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। मेरा पर्पज यहां केवल वंदे मातरम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना है कि ये है क्या, बस मेरा केवल यही मकसद है। तो मैं आपको पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूं। देखिए, जो वंदे मातरम है इसका अर्थ है मातृभूमि की वंदना, वंदे है ना, वंदना यानी कि मातृभूमि की प्रार्थना आप कर रहे हैं, वंदना शब्द हम लोग इस्तेमाल करते ही है। ये बेसिकली सच पूछिए तो हमारा राष्ट्र गीत है। देखिए, राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान ये दो अलग अलग शब्द हैं, और स्टूडेंट अक्सर इनको लेकर के यूं कह लीजिए कि भ्रम में पड़ जाते हैं। राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान हिंदी में भ्रम में पड़ जाते, इंग्लिश में तो नहीं होता। इंग्लिश में क्योंकि जो हमारा जन गण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है, इंग्लिश में उसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, ANTHEM, तो वहां तो स्पष्ट है। लेकिन गान और गीत में अक्सर स्टूडेंट भ्रम में पड़ जाते हैं, यह मैंने महसूस किया है। याद रखिए कि जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, जन गण मन, ठीक है। ये जो वंदे मातरम है, बंकिम चंद चटर्जी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बांग्ला भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उपन्यास है बेसिकली, आनंद मठ, मैंने पढ़ा है आनंद मठ। 1870 के आसपास उन्होंने इसकी रचना शुरू की थी, और 1881 में वो उपन्यास आ गया। तो 1881 को आप याद रखिए, आप 1881 के समय को याद करने की कोशिश कीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन की लगभग शुरुआत हो चुकी थी, और 1885 में बकायदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई। तो 1881 में उन्होंने ये वंदे मातरम गीत अपने इस उपन्यास में लिखा था, उन्हीं का लिखा हुआ है उपन्यास में। उसमें जो साधु होते हैं, बंगाल के में जो अकाल पड़ा था उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया वो उपन्यास है। तो वो जो साधुओं का दल होता है वो वंदे मातरम गीत गाता हुआ निकलता है, जाता है। बाद में फिर इस वंदे मातरम गीत का म्यूजिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया, और इसके शुरू के जो दो पद हैं, उन दो पदों को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उस समय 1937 में, उसे इन्होंने अपने एक नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया, नेशनल सॉन्ग के रूप में। याद देखिए, नेशनल एंथम नहीं है, अब ये नेशनल सॉन्ग ही है के रूप में एक्सेप्ट किया। और 1952 में आनंद मठ के नाम से बकायदे एक फिल्म भी बनी है, 1952, और चूंकि आनंद मठ फिल्म का ही, सॉरी हाँ मतलब उस फिल्म का नाम ही है, तो उस फिल्म में बकायदे ये गाना है, और जिसका म्यूजिक दिया है हेमंत कुमार ने। मित्रों, जो एंथम है और जो सॉन्ग है उसमें जो फर्क होता है, आप अपने दिमाग में दोनों को रख करके अगर तौलें तो कुछ फर्क आपको साफ दिखाई दे जाएंगे कि एंथम एक औपचारिक गान है, मतलब गीत है कह लीजिए, चलिए आप गीत कहना चाहें तो, जिसको हमें रेस्पेक्ट देना होता है, उसके लिए सारी चीजें फिक्स कर दी गई है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतियोगिता हो रही है, गायन प्रतियोगिता हो रही है, तो आप देखिए कि उसमें वंदे मातरम आप गा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत प्रतियोगिताओं में उस तरह से नहीं गाया जाता। उसको एक विशेष सम्मान दिया गया है कि जब भी एंथम हो, राष्ट्रगान हो, तो हम खड़े हो जाएंगे, बकायदे उसका म्यूजिक भी फिक्स है कि इसका म्यूजिक यही होगा, गायन का समय भी फिक्स है कि 52 सेकेंड में ये पूरा होता है। तो इस तरह से उसके लिए काफी औपचारिकताएं बनाई गई हैं, लेकिन आप देखिए कि जो वंदे मातरम है उसके लिए कोई ऐसी औपचारिकता नहीं बनाई गई है। आप जो भी म्यूजिक चाहें आप उसे दे सकते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये कुछ बातें थी जो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों को लेकर के, तो मैंने सोचा कुछ बातें मुझे क्लियर करनी चाहिए। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है। एक छोटी सी खबर है दोस्तों की, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी हैं वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और वो आवामी लीग की नेता हैं। और भारत के साथ चूंकि शेख हसीना जी के बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, भारत के प्रति वो बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण रखती हैं और बांग्लादेश तो हमारा एकदम पड़ोसी राष्ट्र ही है, तो इस लिहाज से वहां शेख हसीना जी का प्राइम मिनिस्टर बनना हमारे लिए खासकर कहीं न कहीं हित में ही होगा। दोस्तों, आज का जो करंट कंटेंट उसमें आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, सरकार की बुनियादी ढांचा निर्माण योजनाओं की सफलता, एक रिव्यू जैसा है, तो आपको चाहिए कि आप इस आर्टिकल को निश्चित रूप से पढ़ें। दोस्तों, अब मैं आता हूं चेक डिप्लोमेसी पर। एक नया नाम है जो दिया गया है डिप्लोमेसी के फील्ड में, और खासकर ये नाम दिया गया चीन की अभी जो कूटनीति चल रही है उसको लेकर। चीन अभी कर क्या रहा है? चीन चेक का मतलब है वो जो पैसा बैंक के लिए काटने वाला चेक है ना, तो इसका आधार यह है कि आपके जो चीन है ये सबसे पहले किसी देश को ऋण देता है, खासकर उसमें एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप सबसे ज्यादा है, वही है समझ लीजिए एक तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देश। ऋण क्यों देता है? आपके अपने विकास के लिए, चाहे आप पुल बना लीजिए, बंदरगाह बना लीजिए, सड़कें बना लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, इनके लिए वह आपको पैसा देता है। जब ये पैसा देने की बात होती है तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैसा देने की बात होती है। ज्यादातर मामलों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैसा देने में, धन देने में जो फायदा होता है लेने वाले को, यह होता है उसमें उस पर कम ब्याज लगता है। ठीक है, उन्होंने आपको दुनिया भर का धन दे दिया। अब जब आप बनाना शुरू करते हैं तब आपके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप चीन का पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, अब आपको ऋण लिया है तो आपको वापस भी देना है। जब आप चुका नहीं पा रहे तो अब क्या होगा? देखिए, अब कूटनीति देखिए, होगा ये कि अब चीन कहेगा कि भाई ठीक है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट के कुछ शेयर हमको दे दीजिए, हम उसके भागीदार बन जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? कहेंगे हाँ भैया ठीक है, जैसे मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो, और मैंने कुछ कर्जा लिया है, तो कहेगा कि भैया 2 एकड़ हमको दे दो, तो आप 2 एकड़ ले लो। फिर अब वो क्या करेगा? अगर हम प्रोजेक्ट के मामले में बात करें तो प्रोजेक्ट अब अधूरा पड़ा हुआ है, तो चीन क्या करेगा कि फिर उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट के हिस्से को कंपनी को सौंप देगा, प्राइवेट कंपनी को जो उसके यहां है, और अपनी प्राइवेट कंपनी को कहेगा जाओ भैया तुम उस प्रोजेक्ट को पूरा करो। अब वो कंपनी अपना दल बल लेकर के आ जाएगी, मतलब उसके इंजीनियर्स आ जाएंगे, उसके मजदूर आ जाएंगे, सब पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अब वहां काफी चाइनीज रहने लगेंगे और उनकी बस्तियां बन जाएंगी। अब 1,000, 2,000, 5,000 चाइनीज अगर वहां आ गए हैं तो उनकी अपनी एक चीन बस्ती बन गई, चाइनीज कॉलोनी बन गई। अब जब चाइना के लोग रह रहे हैं तब चीन सरकार को थोड़ी सी चिंता होती है, तो वो अपने कुछ सैनिक भी भेज देती ताकि इनकी सुरक्षा बनी रहे। अब देखिए कि किस तरीके से चीन ने एक कर्ज दिया था और उस कर्ज को देने के बहाने अब कैसे धीरे 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 एक प्रकार से वह उस देश को अपना उपनिवेश बनाता चला गया, ऑलमोस्ट एक नए किस्म का उपनिवेशवाद, इसे नव उपनिवेशवादी व्यवस्था कहते हैं। चीन के बारे में अब ये बहुत ही कॉमन होने लगा है कि किस तरीके से वो पहले कर्ज देता है और कर्ज देने के बाद किस प्रकार से फिर वह उस सरकार पर धीरे 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 अपनी जोर आजमाइश करने लगता है, उस पर दबाव डालने लगता है और उसका वो कूटनीतिक लाभ उठाता है। इसे ही अब इंटरनेशनल लेवल पर चेक डिप्लोमेसी कहा जाने लगा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि चीन के साथ भारत के जो संबंध है, पड़ोसी देश है, आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए और इसे आपको चीन की एक नीति भी पता लग रही है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, ओम प्रकाश कुमावत नागौर राजस्थान से, संजय कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, सुनील ठाकुर मानस झा, विनय मौर्य दिल्ली से, गौरव शर्मा, प्रतीक सिंह प्रियंका साव इच्छापुर वेस्ट बंगाल से, मयंक अवस्थी और अंकिता अग्रवाल, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन समाप्त करने से पूर्व आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिवादन भी। नमस्कार।